आयत नंबर 233 से, वल वालिदात युर्दिन औलादहुन हौलैन कामिलैन, और जो शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे और बीवी की गोद में बच्चा हो और वो माँ से बच्चे को दूध पिलवाना चाहे तो क्या किया जाए? वल वालिदात, तो ऐसी माएँ युर्दिन औलादहुन अपने ही बच्चे को दूध पिलाएं, कब तक? हौलैन कामिलैन, पूरे 2 साल। ये कब होगा? लिमन अराद अन युतिम रदात, ऐसी सूरत में बच्चे के बाप को मारूफ तरीके से इन्हें लिबास और खाना मुहैया करना होगा। यानी बाप जो है बच्चे का, वो अपनी मुतल्लिका बीवी को उसके लिबास और उसके खाने का खर्चा देगा। और ये सब कुछ किस लिए है, क्यों है? ला तुकल्लफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, न तकलीफ़ दिया जाए कोई शख्स अपनी वसत से ज़्यादा। यानी ये खर्च पानी कितना होगा, जितनी मर्द की हैसियत है। औरत इस बात को आड़ बनाकर, बहाना बनाकर बाप से ज़्यादा मुतालबा ना करे, और दूसरी तरफ बाप भी ये नाम लेकर के मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उसको देने से बिल्कुल इनकार ना कर दे। ला तुदार वालिदतुम बिवलदिहा, माँ को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ़ ना दी जाए। माँ को बच्चे की वजह से तकलीफ़ क्या दी जा सकती है कि बच्चे को ज़बरदस्ती माँ से छीन लिया जाए, बच्चे को अलग कर दिया जाए, माँ को उसको दूध ना पिलाने दिया जाए, मिलने ना दिया जाए, या फिर माँ को उसका खर्च ना दिया जाए। कोई भी सूरत हाल हो सकती है इसमें। और साथ ही साथ वला मौलूदुल्लहु बिवलदिही, और ना बाप को बच्चे की वजह से तकलीफ़ दी जाए। बाप को बच्चे की वजह से तकलीफ़ क्या है? उसकी हैसियत से ज़्यादा मुतालबा करना, जितना खर्च आता है उससे ज़्यादा मांग लेना, या बाप को कहना कि तुम्हें अब हम इसे मिलने नहीं देंगे, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, और इसी तरह की बातें जो हम आगे देखेंगे। और अगर बाप ना हो फिर क्या होगा? यानी बाप फौत हो गया, तलाक दे दी, कोई भी सूरत हो गई, या बाप उसकी कस्टडी में नहीं, या बाप उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता, तो फिर उस माँ और बच्चे का खर्चा कौन देगा? वालल वारिस मिस्लु ज़ालिका, तो फिर अगर बाप का इस दौरान इंतकाल हो गया है तो इसके वारिस पर औरत का खाना पीना इसी तरह है जिस तरह बाप के ज़िम्मे था। अब वारिस कौन हो सकता है? जिसको उस बाप की विरासत में से हिस्सा मिला, वो दादा भी हो सकता है, चचा भी हो सकता है, कोई और रिश्तेदार भी हो सकता है। चचा तो नहीं होगा, बच्चे को विरासत मिलेगी, यानी और कुछ नहीं है तो बच्चे को जायदाद जो बाप से मिलेगी उसी में से माँ का खर्च पानी जो है वो दिया जाएगा। हाँ, ये तो सूरत हो गई करने की, इतनी बात तो वाजह हो गई कि बस अब होता क्या कि जब तलाक होती है तो साथ बच्चे भी होते हैं। तो इस्लाम इतना खूबसूरत इस्लाम है कि वो सिर्फ शौहर और बीवी ही को नहीं कंपनसेट करता बल्कि बच्चे को भी करता है। तो लिहाजा बचपन में बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है। हम सब इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बाप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, कोशिश कर लें, लेकिन जिस तरह माँ अपने बच्चे को पालती है, बाप नहीं पाल सकता। और अगर माँ से लेके फूफी दादी को दे भी दिया गया तो वो कम से कम उसको देख तो लेंगी लेकिन दूध तो नहीं पिला सकती। तो इस्लाम का मिजाज क्या है कि छोटा बच्चा तलाक की सूरत में माँ के पास रहेगा। इसके बाद बच्चे जब बड़े होते हैं, जब बलूगत के आसार शुरू होते हैं, जिसमें आप कहें कि प्यूबर्टी आ गई, निकाह की वक्त आ गया, शादी के वक्त में बाप की ज़रूरत होती है वली के तौर पे। लड़के बड़े होंगे तो उनको बाप की रहनुमाई की ज़रूरत होती है बाहर की, उनकी आउटडोर सरगर्मियों के लिए। तो फिर बड़े बच्चे को बाप को मिलता है। यानी इस्लाम का असूल समझ लीजिए कि बच्चा बाप का ही होता है हर हाल में, क्योंकि माँ के पास पहले नहीं था। जब तक शादी नहीं हुई, उस मर्द की वजह से अल्लाह ने वो बच्चा दिया। अब उस बच्चे को बाप की निस्बसी दिया जाता है, और इसकी बहुत बड़ी दलील आप देख लेते हैं कि बच्चे के नाम के साथ बाप का नाम लगता है। हम सब के नामों के साथ किसका नाम है? हमारे बाप का नाम है। ये जो हमने अपने नाम की वजह शोहरों के नाम लगाए हैं ना, ये भी कोई फेयर बात नहीं है। क्योंकि इस्लाम का मिजाज क्या है? आयशा बिनते अबी बकर। कभी आपने सुना कि आयशा मिसिस मोहम्मद, आयशा जौजा मोहम्मद? हैं तो हैं, वो तो सच है, झूठ तो नहीं है। वजह क्या है कि बाप तो एक ही रहता है। खुदा न खास्ता ज़िंदगी में ऐसे हादसे आए जिनको आजकल हम पढ़ रहे हैं, तो शौहर का नाम तो बदल जाएगा। पहले तो बाप की नाम था, शादी हुई तो आपने चेंज कराया पेपर्स में, अब सारे पेपर्स चेंज हुए, आईडी कार्ड तक और आपका पासपोर्ट तक चेंज हो गया, आप शौहर के नाम पे आ गए। अब शौहर के साथ निभा हो रहा था, अल्लाह ने कर दिया, कागज़ बन गए, पूरे हो गए, दैट्स इट, आपका वीज़ा इस मुल्क में सब जब भी लग गया हो गया, खुदा ना खास्ता तलाक हो गई, आपकी शादी कहीं और हो गई, अब क्या होगा, एक नया प्रोसेस शुरू हो गया ना, अब दूसरा शुरू हुआ तो सब कुछ नया चेंज होगा। इस्लाम इस मुश्किल में नहीं डालता, और ये मिजाज भी है, हम अपने बापों के नाम से पहचाने जाते हैं और खूबसूरत भी यही लगता है। आप सोचेंगे ये फैशन कहाँ से आ गया, आपको पता है, शायद आपने कभी पहले ये बात सुनी है कि नहीं सुनी, कि शौहर का नाम साथ लगना, ये रस्म कब शुरू हुई थी, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, इतने मर्द मारे गए कि औरतों का ढेर लगा हुआ था दुनिया में, शादी के लिए कोई मर्द ही नहीं था, जिस औरत को कोई मर्द मिल जाता, यानी दूसरे लफ्जों में कहेंगे जिसकी शादी हो जाती, वो इतनी खुशकिस्मत होती और वो इतनी खुश होती कि इस खुशी में अपना नाम कुर्बान करके अपने शौहर का नाम लगा लेती। ठीक है, तो इस्लाम इन सारी चीज़ों से आज़ाद करता है औरत को कि हम सब के नाम के साथ बाप का नाम होता है। तो बच्चे की किफालत, अब होता क्या है कि जब तलाक होती है तो बाज़ दफ़ा आप सोसाइटीज़ में देखते हैं कि माएँ सिंगल पेरेंट बन के एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है, खुद भी हैं, बच्चों का भी खर्चा है, चले आप वेस्ट में रहते हैं तो गवर्नमेंट ही आपको कुछ दिलवा देती है, कुछ ना कुछ होता है, अपने मुल्कों में कितनी औरतें तलाक के बाद उनको कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता। इस्लाम जो है ना, मसाइल का हल चाहता है, उसको बुनियाद बनाकर और मसाइल पैदा करना नहीं चाहता। हमारे यहाँ बाज़ हालात में ज़िंदगी नासूर बनी होती है, लेकिन औरतें सिर्फ आने वाले हालात के फितनों और उन तकलीफ़ों को सामने रखते हुए, और उसमें मुआशी परेशानियाँ बहुत बड़ी बुनियाद होती है, फिर वो कुछ स्टेप नहीं ले पाती। तो यहाँ इस्लाम सिंपल सी ये बात बता के हम सब की तवज्जो एक और चीज़ की तरफ भी करते हैं, और वो क्या है कि वल वालिदाती युर्देन औलादहुन्ना, बच्चे को दूध पिलाना माँ की जिम्मेदारी है, इंसान की इंसानियत का तकाजा है कि इंसान को इंसान का दूध मिले। फितरत का ये असूल शुरू से चलता आया। यहाँ तो हम तलाक में इशू पड़े हैं, लेकिन बीच में इशू तो आ गया ना दूध पिलाने का। अल्लाह सुबहान तला ने इंसान को जो जिस्मानी आज़ादी है ना, हर उज्व का कोई मकसद है, हम सब जानते हैं, खाने के लिए अल्लाह ने हमारा मुंह बना दिया, जुबान बना दी, दांत बना दिए, जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जाती है अल्लाह ताला उस चीज़ को एक्टिवेट करते जाते हैं, पैदा होते ही दिल दिमाग धड़कन सब चल पड़ता है, कोई हर्ज नहीं है, सब चला अल्लाह ने करवा दिया, बच्चा सुन रहा होता है, बोलता नहीं है, ऐसा ऐसा बोलना भी शुरू हो जाता है, और आप फील करते हैं कि जो ही वो मुद्दत आती है उसके साथ ही एक बच्चे में वो चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए अगर बच्चे के उम्र तो बढ़े लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें ना दिखें तो परेशानी होती है कि कोई डेफिशिएंसी है, कोई बच्चे के अंदर कमी बेशी है। इसी तरफ देखिए कि जब एक इंसान बालिग होने के करीब होता है तो खुद ब खुद उसके जिस्म के अंदर ऐसी चेंजेस शुरू होती हैं जिसके साथ ही साथ उसके जिस्म में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं। इसी में एक चेंज औरतों में, लड़कियों में उनके जिस्म का उभार है, जिसको यहाँ अल्लाह ताला ने वल वालिदाति युर्देन औलादहुन्ना के नाम से कह दिया कि जिस तरह जिस्म के हर उज्व का एक मकसद है, इस तरह औरत के सीने का मकसद नस्लों की खुराक है। ना तो ये फिगर के लिए था, ना ये कट्स थे, ना ये कर्व है, ना ये है कि इसी को फितना बनाकर फिल्मों को चमकाया जाए, और ना इसी को सजाकर शोकेसों में औरत को नंगा करके दिखा दिया जाए। लेकिन जब इंसान की फितरत मसख होती है, यानी जब उसकी फितरत, उसकी इंस्टिंक्ट, जिसको आप कहें कि उसके अंदर इंसानपन जब मजरूह होता है, जब उसको परवर्ट कर दिया जाए, तो वो चीज़ें जो मकासित कुछ और रखती हैं, लोग उनसे काम कुछ और लेने लगते हैं। इसी में आज औरत का ये हिस्सा भी है, आज औरत को नंगा कर दिया, और औरतें भी जवान होने के बाद अपने फिगर की फिक्र इसलिए भी ज़्यादा करती हैं कि पहने ओढ़ेंगे तो सजेगा नहीं। आप कह सकते हैं कि वो सीना जो औलाद की खुराक के लिए, तो उससे खुराक ही ना मिली। कई औरतें हैं जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती, जिसमें बहुत सारी उजर है, बाउंड हो जाएंगे, फिर जॉब पे नहीं जा सकेंगे, फिर बच्चे को हर घंटे बाद चाहिए, फिर फिक्र ख़राब हो जाएगा, फिर शर्म आएगी, फिर पेंडू लगेंगे, फिर ऐसे लगेंगे, वो लगेंगे। तो आप सोचिए कि ये माइक है, इसका कोई मकसद है रखने का? मुझे क्या ज़रूरत है ये अपने सामने रखने की? मकसद क्या है? कि आप तक आवाज़ पहुंचे। अब इसको सजाने संवारने, इसके कट्स बनाने में इतना उलझा दें, कोई कहता नहीं ये तार इधर रखी हुई अच्छी नहीं लग रही, तारें उठा दें। पड़ा हुआ तो ये खूबसूरत लगेगा, लेकिन अपना काम तो नहीं करेगा ना, आपको मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। बिल्कुल इसी तरह आज एक मुसलमान माँ के दिल में इस चीज़ की तलब और तड़प होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को खुद दूध पिलाए। साइंस कहेगी अब तो मान जाएंगे। आज साइंस के जरिए लोग मुसलमान हो रहे हैं। आज के दौर की रिसर्चेस ये बताती हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। आप अक्सर एक बच्चों के जो दूध बिकते हैं उसके डिब्बे की एड में सुनते होंगे, माँ के दूध का बेहतरीन नेमुल बदल। तो वहाँ मैं अक्सर सोचती हूँ कि माँ के दूध का कोई बेहतरीन नेबल बदल नहीं है, कंपनसेशन हो जाती है। पहले दौर में क्या होता था कि माएँ अपना दूध पिलाती थी, और अक्लमंद औरतें, अल्लाह से डरने वाली, तकवा वाली औरतें उनका दूध पिलवाती थी। फिर देहाती इलाकों में खुली फिजा में नेचर के क्लोज रहने वाली औरतों का दूध पिलाती थी। और इसमें सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अरब कल्चर में आम था शुरफा का दूध पिलाते थे, क्योंकि दूध का असर इंसान की ज़िंदगी के आखिरी दिन तक रहता है। जैसे आपने सुनी हुई है ना बात, के दूध का असर जब बुढ़ापे तक जाता है जिस्मानी तवानाई पे, अल्लाह ताला ने नेचुरली प्रिजर्व करके ऑटोमेशन के साथ, कितना टेम्परेचर हो आप कभी फील करके देखें, अगर बच्चे को दूध पिलाने के लिए आप कहीं निकालें तो ल्यूक वार्म होता है। आप पहले माइक्रोवेव में फीडर रखते हैं, ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर उंगलियों पर डाल डाल के देखते हैं, और कभी जल्दी में पिला दें तो बच्चा चीखता है, उसकी ज़ुबान जल जाती है। ऑटो टेम्परेचर सेट है। फिर दूसरी बात देखिए कि दूध की थिकनेस सेट है ऑटोमेशन। शुरू का जो दूध होता है वाइट पानी की तरह, क्योंकि बच्चे को भी यूज़ टू करना है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की खुराक बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, दूध गाढ़ा हो जाता है। आप कभी एक चम्मच डालते हैं तो कभी आधी डालते हैं, आप दूध ज़्यादा डाल दिया तो गाढ़ा हो गया, तो डायरिया हो गया, आज पतला डाल दिया तो बच्चा जो भूख ही नहीं ख़त्म हुई। आप आज भी वो माएँ जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं उनके बच्चे को पाल दें, और जो बच्चों को आज इस तरह से फार्मूलाज पे चलाती हैं उनको डाल के देखें, हर वक्त बच्चे बीमार और परेशानियों का शिकार, और वो माएँ कुछ कर नहीं सकती। कभी फीडर धो रही हैं, कभी उबाल रही हैं, कभी दूध आ रहा है नहीं, और ख़र्चा अलग का अलग। अल्लाह ने मुफ्त में एक ग़िज़ा रख दी, कहाँ से अल्लाह ताला ने जिस्म में ऐसी नालियाँ डाल दी कि एक बच्ची बचपन में कोई दूध नहीं, जवान हो गई कोई दूध नहीं, 20 25 30 साल की हो गई कोई दूध नहीं, जो ही बच्चा आया दूध भी आ गया। फितरत का एक ना ख़त्म होने वाला ख़जाना है माँ के सीने में, और अगर आज की माँ सिर्फ मॉडर्न कहलाने और अपने जिस्म की साख्त को सही रखने के लिए ये नहीं पिलाएगी, क़यामत के दिन जवाब दे। और आप भी देख सकते हैं कि इस ज़ाहरी असर पे तो जो है, इस पे तो आप आज जाकर रिसर्च करें गूगल में, आपको 20 क्यों मिसालें मिल जाएंगी कि उसमें क्या विटामिन मंजर क्या है, उसकी बात नहीं हम करें, लेकिन जो दूध का असर होता है उसको ज़रूर देखिए। माँ का तकवा, माँ का प्यार, माँ की मोहब्बत जाती है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना तो वो बिल्कुल इस शेप में होता है, अगर आप मेरे हाथ को देखें ना, इस तरह कर्व सा, आपने देखा भी है रमज़ान में कि किस तरह फीटस माँ के पेट में यूँ होता है। आप बच्चा जब बाहर आता है आप उसको सीधा लटाते हैं, वो इनसिक्योर फील करता है। दूध अल्लाह ने माँ का सीना यहीं क्यों लगाया है कि जब माँ बच्चे को लेके बैठती है ना तो बच्चे की कैफियत फिर वही बन जाती है जो माँ के यूट्रस में थी। उसको सिक्योरिटी फील होती है, वो अपने आप को सिक्योर फील करता है, और माँ को भी तस्कीन होती है। 9 महीने उसने उसको पेट में उठाया था, आप अगर पेट से निकाल दिए तो माँ के अपने जज्बों की भी तस्कीन होती है बच्चे को दूध पिला के। और जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं ना वो माँ से मोहब्बत भी करते हैं। पहले दौर में एक आम कहावत थी कि मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, आज क्यों नहीं माएँ बोलती? क्योंकि दूध ही नहीं मिलता। बचपन में माँ जिस तरह बच्चे को पालती है, उसका ख्याल रखती है, इसी तरह फिर उम्मीद की जाती है कि बड़े होने के बाद वक्फिज लहुमा जना हजुल्ली मिन रहमा, सेम वही कैफियतें आ जाती हैं फिर बूढ़े माँ बाप को बच्चे पिलाते हैं। आज हमने उस बचपन में उसको बेबी सिटर पर डाल दिया, डे केयर में डाल दिया, बड़े होकर उन्होंने हमें ओल्ड होम में डाल दिया, तो साइकोलॉजिकल असर है। कितने ही इसके फ़ायदे हैं, आप इन फ़ायदों को अगर सामने रख के इस्लाम के सुकम पे देखेंगे, गौर करेंगे, तो आपको हकीकत में इस पे प्यार आएगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ जो बात हुई आयत में कि जो मुद्दत रज़ात को पूरा करना चाहे, आयत के अंदर लफ्ज़ मौजूद है, तो मुद्दत रज़ात कितनी होती है? ऐ युतिम रज़ात, तो इसको अल्लाह ने खोल के बयान कर दिया, हाउलैनी कामिलैन, 2 साल पूरे। यहाँ भी है और सूरह लुकमान में भी आप पढ़ेंगे कि बच्चे के माँ के पेट में रहने और उसके दूध पीने की मुद्दत को इस तरह से एंगल किया गया है कि 6 महीने का भी बच्चा प्रीमिच्योर पैदा हो जाए तो 2 साल दूध की मुद्दत वहाँ भी पूरी होती है। इसमें लड़के और लड़की का कोई फर्क नहीं है। बस लोगों ने हमारे माशरे में ये भी एक रिवाज बना लिया कि लड़के को ज़्यादा देर पिलाओ, लड़की को कम देर। तो मुद्दत रज़ात है 2 साल, इस तक पिलाइए, उसके बाद फिर छुड़वाना है। इससे पहले कोई छुड़ाना चाहे तो गुना नहीं है। और ख़ास तौर पर यहाँ जो बात हो रही है ना, तलाक के मसले की है ना, तो अगर कोई किसी मजबूरी से माँ का दूध छुड़ा देता है तो गुना नहीं है, लेकिन बच्चा उन फवायद से महरूम होगा। अब यहाँ फिर देखिए कि मुझे आप बहुत ओल्ड टाइम समझ लें या जिसको आप वो क्या कहते हैं, ओल्ड फैशन कह लें मुझे चलें, लेकिन मैं फिर आपको यही बात कहूँगी कि जिस चीज़ को आप जितना नेचर के साथ जोड़ेंगे ना, उतना ही आपको उसके फवायद ज़्यादा दिखेंगे। जितना आप इस मौजू को अपनी ज़िंदगी में लाएं, अपनी ज़िंदगी को आसान रखें। पहले 10-10 बच्चे होते थे, कोई मसले नहीं थे, अब तो उसे आपा ही बढ़ जाता है, एक बच्चा आ जाए वो कहते हैं इसको संभालो तुम, हम घर संभाल लेंगे। क्यों? हमने बच्चों को हथेली के छछाले बना लिया, आर्टिफिशियल काम बहुत डाल दिए कहीं पैम्पर्स के नाम पे। और आप देखें जो बच्चा माँ का दूध पीता है वो पैम्पर कम गंदा करता है। माएँ दूध पिलाने से पहले बच्चों को फारिग कराती थी, गोद में लेके फारिग कराया, दूध पिलाते फौरन जाती थी, ना बच्चे का बिस्तर गीला ना वो सारा दिन गंदगी लपेट के बैठा रहता है। आज हर वक्त बोतल भी मुंह में लगी हुई है और कभी कुछ, और सारा दिन गंदगी में बच्चे रहते हैं, बाकी वलीदी का असर ही नहीं है। फिर एक और चीज़ देखिए कि आज कितनी माएँ परेशान होती हैं कि जी हम बच्चे इतनी जल्दी नहीं चाहते, और दिस एंड दैट जो कहानी आपके सामने, कोई फैमिली प्लानिंग पे फिर आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग करते हैं और कितने उसमें प्रॉब्लम्स औरतों के आ जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ने ये बच्चे को जो 2 साल दूध पिलाना था, ये एक नेचुरल किस्म की फैमिली प्लानिंग थी। आपने अपनी नानियों दादियों से यही सुना होगा, 2 साल तक बच्चा दूध पीता था तो आगे से प्रेगनेंसी नहीं होती थी। अल्लाह ने हमारे जिस्म में इतनी खूबसूरत सेटिंग की हुई है कि जब तक एक बच्चा दूध पीता रहता है, दूसरे के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आज गड़बड़े इतनी हो गई, हमारी सारी लाइफ ही उलझी पड़ी है। मुझे तो ऐसे लगता है रस्सियाँ उलझी हुई दिमाग में भी और जहनों में भी। आज एक बच्ची अगर अपनी ज़िंदगी में शुरू से किसी मेडिकेशन पे ना जाए, आज ज़रा पेन्स होने लगे हैं तो गोली दे देते हैं, कभी कुछ और कहीं पीरियड्स की दवाइयाँ और कहीं साइकिल, लेट इट गो, अपने आप को हवा के रुख पे छोड़ दें। बीमार होएंगे तो कुछ नहीं होगा, सेहत भी मिल जाएगी। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अगर हम अपनी सोच पाक रखें, नेचुरल लाइफ रखें, बचपन से शुरू से अपने आप को बगैर किसी आर्टिफिशियल चीज़ों के आप रखें, वाइटामिन दे, ये इस सब को छोड़ के आप देखेंगे कि शादी के भाई ये नेचुरल किस्म की आपके पास अल्लाह की तोबाट है। आज गड़बड़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हम इन चीज़ों को ले नहीं पाते, हम इसको पूरी तरह से फॉलोअप नहीं कर पाते। फिर इसी तरह आप एक और चीज़ देखिए, और वो क्या है कि इस्लाम किस तरह से तलाक और इद्दत के मामलात के बाद भी दो लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़े रखता है। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि जब बच्चा पास होता है ना, तो शौहर बीवी तलाक लेके भी अलग नहीं होते, चाहे वो गाड़ी में बैठे रहे, बच्चा उस बाप के घर जाए, लेकिन छोड़ने खुद ही जाती है माँ। आमना सामना भी होता है, कभी उस पहले शौहर से होता है, कभी ससुराल से भी होता है, कभी बाप छोड़ने आता है, फिर आपस में अदालतों में जाके उनकी टॉकिंग भी होती है। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है ना, तो ये जो कैफियत है, अगर मिसाल है कि जो पीछे हमने अभी तलाक के सिलसिले देखे हैं, अगर ये बच्चे का भी इशू बीच में हो और एक तलाक लियो या दो लियो और ख़त्म हो गया मामला, तो क्या ये बच्चा दोबारा उनको जोड़ने का जरिया नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो इस्लाम की हिकमतों को समझने की ज़रूरत है। और फिर यहाँ आप देखिए कि जुल्म किस पे है, किसी पे भी नहीं। अगर वो बच्चा औरत उस घर में ही रहती, तलाक ना होती, तो मर्द ने कमा के देना था। अब औरत तो चली गई घर से, तो अब बच्चे की वजह से औरत को जा रहा है, किसी पे जुल्म नहीं हो रहा। जैसे मर्द ने तलाक देने के बगैर भी देना था, इसी तरह दे रहा है, औरत को मिलना था मिल रहा। आज इसकी एक दूसरी एक्सट्रीम हुई, आपने अलमनी का नाम सुना होगा, वेस्ट में आम है। यानी आज वेस्ट में जब तलाक औरत लेती है तो बाज दफा वो पूरा घर अपने नाम करवा लेती है। मर्द भी तलाक दे सकता है, औरत भी दे सकती है, ज्वाइंट अकाउंट सारा बीवी के नाम रहता है। एलमनी कहते हैं मुझे लगता है इसके बारे में। यानी एक तरफ औरत पे जुल्म हुआ कि उसको कुछ नहीं मिला, आज की औरत हकूक के नाम पे मर्दों पे जुल्म कर रही है। एक ऐसे कहानी आपने भी सुनी होगी कि तलाक की सूरत में कंगाल कर दिया उस औरत ने अपने मर्द, सब कुछ अपने नाम करा लिया और गवर्नमेंट देती है। इस्लाम कहता ला दरर वला दरार, न तुम किसी को तकलीफ दो ना कोई तुम्हें तकलीफ दे, हाँ, अब दूसरी सूरा, अब जीम के आगे चलिए क्योंकि मैंने इस हिस्से को इतना छोड़ दिया था। फाइन अराद फिसालन, फिर अगर वो दोनों दूध छुड़ाने का इरादा करें। अंतरा दिम बिन हुमा, बाहमी रजामंदी से, व तशावुरिन और मशवरे से, तो फला जनाह अलैहिमा, कोई गुनाह नहीं। किस टैक्स में आयत आ रही है? तलाक के टैक्स में। तलाक हो चुकी, बच्चे को दूध माँ से ही पिलवाया जाए या किसी और से पिलवाया जाए, इसको बाहमी रजामंदी से सेटल डाउन कर लो। कौन करेगा जिन्होंने एक दूसरे को बातें नहीं की होंगी? हमारे जो मिजाज गर्म हो जाते हैं ना, उससे बनी बनाई बात बिगड़ती है। तो यहाँ से मिजाज समझिए कि हो गई तलाक, नॉट अ बिग डील। हमारे तो अल्लाह माफ करे, दो सगे खानदान है ना, भाई बहन के बच्चों की तलाक हो जाए, वो कहते हैं मैंने उसका मुंह नहीं देखना, वो कहते हैं मैंने उसका मुंह नहीं देखना, मैं मर गया तो उसको ना बुलाना, वो मर गई तो मुझे ना बुलाना। एक नासूर बन के अपनी जात को पालते हैं, हालांकि ऐसे कोई मामलात नहीं, रजामंदी है, दिस एंड दैट है, कोई हरज नहीं है। और आम हालात में भी यही है, कोई जिस्मानी प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर्स का मसला है, कुछ भी है, तो अगर दूध छुड़वाए औरत बच्चे का, तो शोहर बीवी की बाहमी रजामंदी के साथ ये काम हो सकता है। फिर अगला इशू देखिए, वाइन औरत तुम, और अगर तुम इरादा करो, कौन है ये तुम? तलाक देने वाला मर्द। अंतस्तर दियो औलादकुम, कि तुम अपनी औलादों को दूध पिलाओ, यानी अगर तुम्हारा ख्याल अपनी औलाद को किसी गैर औरत से दूध पिलवाने का हो, तो कोई गुनाह नहीं। फला जुनाह अलैकुम, शर्त है बस एक, इजा सल्लम तुम आते तुम बिल मारूफ, बशर्ते इसका जो कुछ मुआवजा तय करो वो मारूफ तरीके से दो। अब अपनी बीवी को तो सिर्फ खर्चा पानी देना है ना, लेकिन अरबों में ये बकायदा एक प्रोफेशन था, गरीब और अमीर दो घरानों को जोड़ने का एक बड़ा खूबसूरत फलाही मंसूबा था। ये भी इस्लाम का मिजाज आपने शायद नहीं देखा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ ही नहीं है। होता क्या था कि कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे। जैसे नबी सल्लम की पैदाइश के मौके पे आप सुनते हैं कि गांव की गरीब औरतें अपनी गधियों पे सवार होकर गईं और वहां से बच्चे लाई, तो बच्चे को दूध पिलाने के फिर लोग पैसे देते थे। जो गरीब और खुले माहौल में रहने वाली औरतें होती हैं ना, उनके पास अमूमन सेहतमंद दूध होता है, क्योंकि वो उनकी लाइफ बड़ी नेचुरल होती है। शहरों में रहने वाली औरतें चूंकि थोड़ी सी आर्टिफिशियल लाइफ की आदी होती हैं, दूध कमज़ोर है। अल्लाह ताला कैसे एक नेचुरली एक ऐसी चीज़ माँ के जिस्म से प्रोड्यूस कराता है जो उसका सोर्स ऑफ इनकम बन गई। उसको कहीं बाहर जाके किसी काउंटर पर खड़े होकर चीज़ें बेचनी ना पड़ी लोगों की, जिसमें उसकी निस्वानियत भी गई और उसका ख़राबी भी हो गई। तो ये गरीबी और अमीरी को मर्ज करके एक तो फर्क खत्म किया। उस दौर में कोई ये नहीं कहता था इसने गरीब औरत का दूध पिया, वो ये कहते थे कि इसने एक बड़ी सेहतमंद औरत का दूध पिया। और इस्लाम ने औरत का दूध पीने को बच्चे के लिए इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया कि सगी माँ की तरह उस माँ के भी हकूक रख दिए। तीन रिश्ते होते हैं सगे, जिसको आप एनी रिश्ते कह सकते हैं, जो हमारा सबका सगा रिश्ता होता है, और दूसरे सहर, ससुराल के नाते से कुछ रिश्ते बनते हैं, वो नसब के थे पहले, दूसरे सहर के थे, और तीसरे जो है ये रजात के हैं। जिस माँ का दूध पी लिया वो बच्चा उसका ही है, वो उससे माँ की तरह ही है, सारी जिंदगी उससे निकाह नहीं हो सकता, वो उसका महरम बनेगा, उसका शौहर जो है वो उसका बाप बन जाएगा। उस बच्चे के साथ उस माँ के जितने बच्चे हैं, वो सारे के सारे उसके रजाई भाई और रजाई बहन, कितनी बड़ी फैमिली हो गई। उस औरत जिसने दूध पिला उसकी बहन, उसकी खाला बन गई, उसकी फूफी बन गई। है हमारे घरों में आज कोई रिवाज? हालांकि जहाँ दीन है, माशाल्लाह, हम खुद इसकी गवाही दे सकते हैं कि हमारे घरों में जहाँ दीनदार बहुएं हैं, तो एक ने दूसरे का पिया हुआ है, और बल्कि लिखना पड़ रहा है कि लिखा हो कि किसने किसका पिया हुआ है, जान के पिलवाते हैं। यानी खुद एक भाभी के बच्चों का दूध दूसरे भाभी के सारे बच्चों ने पिया हुआ है। फायदा अब क्या हो रहा है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो अपनी ताई और चच्ची से पर्दे की जरूरत नहीं है, रह गए रिश्ते, वो तो वैसे ही नसीब से होने होते हैं। तो हजरत आयशा के अपने बच्चे नहीं थे, तो क्या करती थी आपको पता? जिसका कोई बच्चा पैदा होता है, जिसको अच्छा लगता उसको लाती, हजरत अस्मा का दूध पिलवा देती, तो हजरत आयशा उसकी खाला बन जाती, तो वो रजात से रिश्ते बनते। हमारे खानदान में एक दो ऐसे बड़े खूबसूरत केसेस हुए हैं कि वो फिर वो बच्चे बड़े एक प्रोमिनेंट हो जाते हैं ना, कि कोई नहीं अंदर जा सकता, वो बच्चा जा रहा है। तो ये कहाँ होता है जहाँ फिर औरतों के हिजाब और पर्दे के इंतजाम आते हैं। भाई आप देखिए ना, एक ही घर में देवरानी जिठानी रहती है, एक के बच्चे ने दूसरे का दूध पी लिया, बच्चे हैं तो बच्चे ही हैं। जब जरा बड़े हुए, अगर वो खवातीन दोनों पर्दा करती हैं, तो जाहिर बात है कि जूं ही देवर का बच्चा जो है वो बालिग होगा, तो ताई से उसका पर्दा हो गया, लेकिन अगर उसने ताई का दूध पिया हुआ है, तो वो उसकी माँ। अब जब उसकी माए तो ताई की बेटी पे कभी वो भाई हो गया, वो खुलेआम जा रहा है, घर में आ रहा है, फिर रहा है, बाकी रो रहे हैं ये क्यों जा रहा है जी, इसलिए कि इसका बेटा। तो कितना मजे का खानदान बन जाता है ना। तो इस्लाम लोगों को इस तरह जोड़ता है, कभी एक नाते से कभी दूसरे से। और फिर जो बच्चा जितनी ज्यादा औरतों का दूध पीता है ना, उतना जिसको आप कहना चाहिए कि मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, उतनों की ताकत लेता है। आज साइंस ने भी ये चीज़ कर दी कि बच्चे के अंदर जब डिफरेंट तरफ से खुद दूध आता है तो जो उसके जिस्म में बीमारियां हैं, बात जब एक ही खानदान चल रहा है ना, चल रहा है चल रहा है, तो वो बीमारी मल्टीप्लाई होती जाती है होती जाती है। बच्चे कमजोर होने लगते हैं दिन ब दिन। जब दूसरी औरत का पिएगा तो हो सकता है उस ब्लड के अंदर एक ऐसी चीज मिल जाए कि जो उस खानदान से वो पूरी बीमारी दूर कर दे। लेकिन हमारा चूंकि इन चीजों से वास्ता ही नहीं पड़ा हुआ ना, तो हम फिर इस पे चूचा करते हैं। दोबारा आगे चलते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि किसी और से भी दूध पिलाना चाहो, शर्त क्या है कि इज़ा सल्लम तो मात ही तुम, जो इरादा किया है, जो उनसे एग्रीमेंट किया है कि मैं ये दूंगा वो दो, जुल्म ना करो कि दूध भी पिलवा लो और पैसे भी ना दो। और देखो वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरा करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इंसानी मामलात में तकवा की बहुत ज़रूरत होती है, ऐसा ना हो कि तुम उनको कुछ कम दे दो या उनसे ज़्यादा फ़ायदा ले लो, मरूफ तरीके से ये काम करते रहो। वालमु अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, और यकीन रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नज़र में है। आप महसूस करते, साथ साथ लॉ पढ़ाया जा रहा है और साथ साथ तज़किया, दिल की हरकत, दिल में ये करो वो करो। इस तरह से एक इंसान अपने आप को अल्लाह ताला की इन चीज़ों को सुनते वक्त खुशकिस्मत महसूस करता है कि मैंने इन सारी चीज़ों को किस तरह लेना है। अब एक सवाल छोटा सा आपके फ़ायदे का है कि नहीं, लेकिन ये कि बच्चे की रज़ात माँ से कब कायम होती है? क्या बस ऐसे एक दफ़ा जाते जाते किसी के बच्चे को आपने अगर दूध दे दिया तो वो बच्चा बन गया? तो इसके लिए जो सही, बहुत सारे इख्तलाफी बातों में से जो सबसे साउंड चीज़ है वो क्या है कि इतना दूध बच्चे के पेट में चला जाए कि उसकी अंतड़ियाँ भर जाएं। 5 घूंट के लफ्ज़ हज़रत आयशा की रिवायत से मिलते हैं कि एक नशिस्त में बच्चा 5 घूंट उस औरत के दूध पी लेगा तो फिर वो उसका रज़ाई बच्चा बन जाएगा। अब तक एक सहाबी ऐसे हैं कि जो बालिग थे, बड़ी उम्र के थे, लेकिन किसी भी तरीके से उनको एक दूसरी औरत का दूध निकलवा के पिलाया गया जिनसे उनकी रज़ात कायम हुई। सुना है कभी आपने किसी ने? यानी उनका एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है, यानी हर चीज़ में कुछ एक्सेप्शन मिलती है, अदरवाइज 2 साल के बाद फिर रज़ात कायम नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे मसले हैं। एक ऐसा जोड़ा था अल्लाह के नबी के दौर में, शादी हुई, उनका बच्चा भी था, बाद में कुछ अरसे के बाद बात खुली, एक औरत कौन से आई, ये कौन है ये कौन है, उसने कहा ये है मैं हूँ। अच्छा, कहती ये कैसे इनकी शादी होगी, इन दोनों ने तो मेरा दूध पिया। ये ऐसी है जैसे बचपन में बच्चे एक ही डे केयर में खेलते हैं आते हैं, तो वो उस एक दाया ने गवाही दे दी कि इन दोनों का निकाह नहीं हो सकता था, ये तो मैंने पिला। अब मसला पड़ गया, मसला अल्लाह के नबी सल्लम तक पहुंचा, फिर इशू खोला गया, पता चला कि उस औरत की गवाही सच्ची है। अब याद नहीं रहता होगा ना कि कौन किधर गया कौन किधर गया, तो आपने क्या किया, फिर सेपरेशन करा दी। अब ये भी को बड़ा इशू नहीं था उस दौर में, हमारे होता तो कहते लोग घर टूट गया बच्चे का क्यों होगा। तो एक्सेप्शनल केसेस बहरहाल होते हैं जहाँ ये सब कुछ है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को सामने रखते जाओ, ये याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें भी देख रहा है, और जो भी तुम किसी के साथ अच्छा बुरा मामला करते हो अल्लाह ताला की नज़र उस पर है। और ये सारी चीज़ बताकर अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सोच भी दे दी। वाला एक नोट कर लीजिए कि बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत का तذکرہ सूरत अल-अहकाफ आयत नंबर 15 में भी है। व हमलुहू व फिसालुहू 30 शहरा, कुरान पाक में सूरत अल-अहकाफ आयत 15 में आता है व हमलुहू व फिसालुहू 30 शहरा, के माँ के पेट में बच्चे के हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत जो है वो 2.5 साल है। तो 2 साल ये हो गए, 6 महीने में कम से कम बच्चा जो होता है वो भी फिर रह जाता है, उससे पहले अगर बच्चा पैदा हो जाए तो फिर वो अमूमन नहीं बचता, यानी उसकी ग्रोथ जो है वो पूरी नहीं हुई होती।